लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे असाध्य रोगियों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि उन्हें आवश्यक शारीरिक और आध्यात्मिक देखभाल, सहयोग और समर्थन मिल सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत फादर जफर इकबाल के साथ हुई भेंट वार्ता के दूसरे भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। अमन चैन की जिंदगी सभी जीना चाहते हैं, जो तभी संभव है जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को भाई बहन की नजर से देखते और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यही हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की शिक्षा भी है। आज विश्व में कई जगह ख्रिस्तियों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। उन ख्रिस्तियों में भारत और पाकिस्तान के ख्रिस्ते भी शामिल हैं। ऐसी परिस्थितियों का सामना हम एक सच्चे ख्रिस्ते के रूप में कैसे कर सकते हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान से फैसलाबाद धर्म प्रांत के फादर जफर इकबाल, जो हमें पाकिस्तान की चुनौतियों से अवगत कराते हुए एक सुंदर संदेश दे रहे हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है फादर जफर इकबाल के साथ भेंट वार्ता। उनके साथ बात कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
अगर हम देखें डिफरेंट लेवल पे जो हमारे ताल्लुकात हैं मुसलमानों के साथ या दूसरे आपस में, हम कितने जितने भी मिनोरिटीज हैं, तो हमारे जो ताल्लुकात हैं वो कल्चरली बहुत अच्छे हैं। कल्चर के लिहाज से अगर कोई किसी मुसलमान अगर कोई डेथ हो गई है तो हम मसीही लोग उनके घर जाते हैं उनके साथ अफसोस करने के लिए। अगर हमारा कोई घर में डेथ हो गया तो वो आते हैं, या अगर शादी ब्याह है तो अगर अच्छे तल्लुकात हैं तो हम वो एक दूसरे को बुलाते हैं। फिर जो बिजनेस है उसमें हम काम करते हैं तो कल्चरली हम बहुत मतलब क्लोज हैं। लेकिन जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन लेवल पे आके तो हम डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते हैं। फिर हमें ये समझा जाता है कि ये मसीही हैं और हम मुसलमान हैं, और या ये हिंदू हैं तो हम मुसलमान हैं, और वी आर सुपीरियर एंड दे आर इन्फीरियर। सो यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में रहते हुए मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है। उसमें मिसाल के तौर पर इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं और जॉब क्राइसिस हैं, पॉवर्टी है, तो इस लिहाज से हमें क्योंकि बहुत हमारे पास इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, ना ही अपॉर्चुनिटीज हैं। हम ज्यादा कोई पढ़े लिखे, हमारे इतने चांस नहीं है हमारे पास पॉवर्टी की वजह से, गुर्बत की वजह से, तो इसलिए हमें इन चीजों का सामना करना पड़ता है। फिर दूसरा ये है कि जो कानून है एक ब्लास्फेमी, उसको जब गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है फिर हमें इस मुश्किल का भी सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर 2009 में गोजरा में, हमारी डायसिस में जगह है गोजरा और कोरिया, तो वहां पर बहुत सारे घरों को जला दिया गया और 10-12 लोग जिंदा जला दिए गए। इसी बना पर भी इन्होंने गुस्ताखे रसूल किया है, जबकि केस नहीं था ये हकीकत में। अभी ये 2022 में, ये 23 में हुआ है, ये पिछले साल 16 अगस्त को जड़नवाला में, हमारी ही डायसिस में
जी,
बहुत सारे तकरीबन 200 से ज्यादा मसीही घरों को जला दिया गया और 26 से ज्यादा चर्चेस को जलाया गया, सलीब की बेहरमती की गई, बाइबल मुकद्दस को जलाया गया। तो हमें इन चीजों का सामना तो करना पड़ता है। फिर एक मसीही कब्रिस्तान को जला दिया गया और स्कूल को जलाया गया है, एक पैरिश हाउस को जला दिया गया। तो बहुत सारे इन चीजों का सामना जब हम करते हैं तो कभी कभी हम डिसहार्ट भी होते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि फिर भी हमें पता नहीं, खुदा इतनी हम पर मेहरबानी करता है, बरकत देता है कि हम अपनी माँ में फिर मजबूत हैं।
खबरें सुने थे हम लोग और हमें भी बहुत दुख हुआ था कि हमारे भाइयों को इस तरह का सहना पड़ रहा है। हमारी प्रार्थनाएं और दुआ हमेशा आप लोगों के साथ रहती हैं। तो जैसे कि हमारे पोप बहुत कोशिश कर रहे हैं अलग अलग धर्मों के लोगों को एक साथ लाने के लिए और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब भाई भाई हैं, भले कि हमें अपने धर्मों में पक्के रहना चाहिए और अपने धर्मों को मानना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे को आदर, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना चाहिए, इस तरह की बात। तो पाकिस्तान में हमारी ओर से, कैथलिकों की ओर से क्या पहल है, मैंने आपस में अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ मिलकर रहने के लिए?
पाकिस्तान में खुदा का शुक्र है कि इंटर रिलीजियस जो डायलॉग है वो बड़े ही जोरों शोर से, बड़े ही मजबूत तरीके से इस नेटवर्क को चलाया जा रहा है, ताकि जो हमारे पोप साहब हैं वो जब इस मौकफ को लेकर आगे बढ़ते हैं, इस आइडिया को कि वी आर ऑल ह्यूमन, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, इस लिहाज से पाकिस्तान में भी इंटर रिलीजियस जो डायलॉग है ये बहुत मजबूती से काम कर रहा है, ये जो नेटवर्क है, ताकि हम एक दूसरे के मजहब की कदर करते हुए हम ह्यूमन लेवल पे तो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। मजहब अपना अपना हो सकता है, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और हम एक दूसरे को कदर की निगाह से देखें।
और आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पोप के रेडियो से आप हमारे पाकिस्तान के भाइयों को और साथ ही हमारे भारत के भाइयों को, ख्रिस्ते भाइयों को आप क्या प्रोत्साहन देना चाहेंगे?
मेरा पैगाम यही है कि हम अमन के लोग हैं, मसीही लोग अमन के लोग हैं, हम मोहब्बत करने वाले और मोहब्बत को जन्म देने वाले और मोहब्बत को फैलाने वाले लोग हैं। तो जब क्योंकि दुनिया को अभी मोहब्बत की जरूरत है, दुनिया को अभी अमन की जरूरत है, तो हम अमन फैलाने वाले बनेंगे, हम मोहब्बत फैलाने वाले बनेंगे, ना कि हम दुश्मनी और नफरतें फैलाने वाले बने। तो मेरा तो पैगाम यही है, क्योंकि हमारे पोप साहब ने जो हमारे रूहानी पेशवा हैं वो हमें ये दर्श देते हैं, उसके जाहिर है खुदावंद यसू अल मसीह हमारा निजात दहिंदा मोहब्बत की बात करता है, कुर्बानी की बात करता है, अमन की बात करता है। तो हमारा तो पैगाम जो यीशु मसीह का है वही पोप साहब का, पोप साहब जो है वो हम तक पहुंचाते हैं। तो हम अपने पोप साहब के साथ मिलकर अपनी अपनी जगह पर मोहब्बत और अमन का पैगाम दें।
बहुत बहुत धन्यवाद फादर इकबाल आपके संदेश के लिए और आपके वचनों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको।
सां सवेरे गाए मिलकर ईश का हम महिमा गाएं,
आओ मिलकर भेंट करें हम ईश पिता को तन और मन,
अपनी सब कमजोरियां और मन की कामना,
अपनी सब कमजोरियां और मन की कामना,
जीवन के दुख और सुख भी ईश पिता को भेंट करे,
जीवन के दुख और सुख भी ईश पिता को।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका अंध श्रद्धा, लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओ, एक तरफ जहां विज्ञान और टेक्नोलॉजी आत्मा भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारती है, वहीं कुछ ढोंगी बाबा लोगों को मूर्ख बनाकर और भूत प्रेत का भय दिखाकर अच्छी खासी मोटी रकम वसूल लेते हैं। अगर संयोग से ऐसे बाबाओं के संपर्क में आने से किसी का बिगड़ा हुआ काम बन जाए तो वह उस बाबा को भगवान के समान मानने लगते हैं और फिर ऐसे बाबाओं का प्रचारक बन जाते हैं और इस तरह बाबाओं का नेटवर्क बढ़ता जाता है। ये अंधश्रद्धा ही है जिससे बीमार और दुखी जनता ऐसे बाबाओं की तरफ आकर्षित होती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि न सिर्फ अनपढ़ व्यक्ति बल्कि पढ़े लिखे लोग और बड़ी बड़ी हस्तियां भी ऐसे ढोंगी बाबाओं के चंगुल में फंस जाते हैं। अपने जीवन के हर सवालों और समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए बाबाओं के चक्कर लगाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसे बाबाओं पर भरोसा करते रहेंगे। जो लोग अंधविश्वास को मानते हैं वे डरे हुए अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं, लेकिन साहसी लोग अपने बुद्धि और समझ पर भरोसा करते हैं और अंधविश्वासी धारणाओं से बाहर निकल जाते हैं। वे अपने दोस्तों को अंधश्रद्धा से बाहर निकलकर जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की सलाह देते हैं, पर उन्हें स्वीकार कराने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। परंतु जीवन में कुछ परिस्थितियां आती हैं जो उसकी बुद्धि और तर्क से ऊपर रहती है और स्वतः ईश्वर में उसकी आस्था का विकास होता है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका अंधश्रद्धा।
मतलब आजकल खूब आराम फरमा रहे हो तुम?
सब नाथ बाबा की कृपा है। बेटा दुकान संभालने लायक हो गया है तो दुकान संभालने लगा है और उसने मुझे आराम करने के लिए बिठा दिया है। बेटी की शादी कर चुका हूँ तो अब आराम ही करूँगा भाई।
मगर तुम यह क्यों भूलते हो शिरीष कि अभी तुम्हें बेटी की शादी भी करना है?
उसकी मुझे चिंता नहीं, मेरी सारी चिंताओं को बाबा मिटा देते हैं। हमने तो सारी चिंता बाबा पर छोड़ दिए और आनंद के साथ अपना जीवन गुजार रहे हैं।
मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ शिरीष, क्योंकि अगर हम इंसान हैं तो हमें कोई ना कोई फिक्र चिंता तो रहती ही है, और इंसान की चिंता उसकी मौत के साथ ही खत्म होती है, ये तो मानते हो ना?
कहना तो तुम्हारा सही है, लेकिन मैंने कहा ना कि हमारी चिंताएं तो बाबा स्वयं हर लेते हैं।
तुम्हारी यह बात भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि तुम्हारे बाबा भी तो एक इंसान ही है, उनकी अपनी खुद की चिंताएं भी रहती होंगी भले ही वो तुम्हें पता ना हो।
बाबा के बारे में यह सोचना उनकी शक्ति पर अविश्वास करना है। हमारी तो बाबा पर पूरी आस्था है सागर, श्रद्धा और विश्वास भी है।
मतलब बाबा पर तुम्हारी अंधश्रद्धा है और उस अंधश्रद्धा और आस्था के कारण तुम बाबा पर बहुत विश्वास करते हो?
बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करते हैं, क्योंकि हमने उन्हें आजमाया है।
विश्वास करने के लिए बाबा को भी आजमाने की जरूरत पड़ी तुम्हें? विश्वास तो विश्वास होता है, उसके लिए आजमाने की जरूरत कहाँ पड़ती है यार।
नमस्ते भाई साहब।
नमस्ते भाभी।
आओ सविता बैठो, सागर से मजेदार बहस चल रही है। तो तुम क्या कह रहे थे कि विश्वास करने के लिए आजमाने की क्या जरूरत है, और अगर हम बाबा को आजमाते नहीं तो फिर हमारा विश्वास उन पर पक्का कैसे होता है?
हाँ यह बात तो है, बाबा की दया से हमारे कई काम हुए हैं, उनका नाम लेते ही हमारे काम हो जाते हैं, इसलिए हम उनको दान के रूप में रुपया भी देते हैं। सब उनकी कृपा से ही तो पाते हैं हम।
एक बात बताऊं भाभी, आप लोगों के जो भी काम हुए हैं या हो रहे हैं ना, वो सब काम आपके होना ही थे इसलिए हो रहे हैं, इसमें किसी बाबा वगैरह का हाथ नहीं है। हाँ उन कामों का श्रेय अगर किसी को देना ही है तो भगवान को दो, ईश्वर को दो।
मगर हमारे काम तो बाबा का नाम लेने से ही होते हैं।
मैंने कहा ना भाभी, आपके काम इसलिए होते हैं क्योंकि वे होना ही है। फिर और अगर आप बाबा का नाम लो या किसी पत्थर का नाम लो, लेकिन बेहतर होगा कि आप ईश्वर का ही नाम लो, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, मानव का रचियता है।
मतलब बाबा तुम्हारी नजर में कुछ नहीं है?
देखो शिरीष, इस दुनिया में हर एक इंसान का अपना एक वजूद, अपना एक महत्व होता है, लेकिन भगवान से ऊपर उसके समकक्ष या ईश्वर तुल्य तो कोई भी नहीं है।
लेकिन बाबा भी तो ईश्वर की तरह जन कल्याण के ही कार्य कर रहे हैं।
उनके जन कल्याण के काम भौतिक रूप से किए गए काम होंगे, लेकिन अलौकिक रूप से किया गया कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि बाबा अलौकिक रूप से कुछ भी नहीं कर सकता।
कमाल है यार सागर, तुम पढ़े लिखे होकर भी अविश्वास की बात कर रहे हो।
शिरीष भाई, पढ़ा लिखा हूँ तभी तो ऐसी बात कर रहा हूँ, और किसी व्यक्ति पर अंधश्रद्धा के खिलाफ बोल रहा हूँ, और यही बात तो मुझे आप लोगों से करनी चाहिए कि पढ़े लिखे होकर आप लोग कैसे किसी व्यक्ति पर अंधश्रद्धा, आस्था और विश्वास में पड़े हुए।
सागर भाई, बाबा शक्ति संपन्न है और अपनी शक्तियों से ही वे अपने भक्तों के काम करते हैं।
चलो भाभी, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि बाबा शक्ति संपन्न है, लेकिन शक्ति उनमें आई कहाँ से?
ये शक्ति उन्हें ईश्वर ने ही दी है, उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है।
मतलब बाबा से शक्तिशाली ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर ने ही बाबा को शक्ति दी है, तो फिर आप लोग सीधे ईश्वर से ही क्यों नहीं मांगते, प्रार्थना करते हैं? क्यों किसी व्यक्ति के पीछे भागते हैं? क्या आप लोग ईश्वर को नहीं मानते?
ये क्या कह रहे हो यार तुम? हम तो ईश्वर को बहुत मानते हैं, लेकिन बाबा को इसलिए मानते हैं क्योंकि वे ईश्वरी शक्ति प्राप्त बाबा हैं।
फिर तो सफेद झूठ बोलते हैं आप लोग।
इसमें सफेद झूठ की क्या बात है सागर भाई?
क्योंकि आप लोग बाबा रूपी एक इंसान को, एक व्यक्ति को भगवान बनाने में लगे हुए हैं। आप लोग दिखाई देने वाले रूप में भगवान का, ईश्वर का विकल्प तलाश कर रहे हैं।
हम ऐसा क्या कर रहे हैं?
आप लोग ही क्या, ऐसे बाबाओं के लाखों अंधे भक्त ऐसा ही कर रहे हैं और ईश्वर की सत्ता के सामने एक चुनौती खड़ी कर रहे हैं। ढोंगी बाबाओं को महिमा मंडित कर रहे हैं, जबकि सच्चे महात्माओं को इन सब की कोई जरूरत नहीं होती, ना ही भक्तों के दान और ना किसी चंदे की जरूरत होती।
सागर भाई, आप तो बाबा पर से हमारे विश्वास को डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं।
भाभी, वो विश्वास ही क्या जो किसी की बात से डगमगा जाए। मैं तो वास्तविकता की बात कर रहा हूँ। इंसान को इंसान ही रहने दो, उसे भगवान मत बनाओ। इंसान अगर भगवान बन जाए तो उसके लिए तो बहुत है, और वो इंसान सिर्फ अगर एक इंसान और वो भी आदर्श और अच्छा इंसान बन जाए तो उसके लिए यही बहुत है। खैर, काफी समय हो गया है, चलता हूँ भाभी। अच्छा शिरीष,
फिर आना भैया।
आप लोग भी आइए। नमस्ते।
नमस्ते भाई साहब। नमस्ते दीदी।
नमस्ते।
आइए बैठिए।
ओहो, आइए आइए, बहुत दिनों में आना हुआ आप लोगों का। नमस्ते भाभी।
नमस्ते भैया। काम्या, अभी किसी बात की तकलीफ मत करना, जो भी लाना हो थोड़ी देर बाद लाना।
ठीक है दीदी। और कैसे हैं आप लोग?
सब आपके सामने ही है
काम्या। दरअसल हम दोनों सागर भैया को धन्यवाद देने आए हैं।
हाँ, सागर के कारण ही हमारी आंखों पर बंधी पट्टी हट गई है।
क्यों, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया?
मैं बताती हूँ काम्या। हम लोग नाथ बाबा को बहुत मानते थे, उन पर अंधश्रद्धा रखते थे। कोई भी काम उनकी बिना अनुमति के और उनका नाम लिए बगैर हम नहीं करते थे। हमारे सारे काम हो जाया करते थे। इसीलिए जब हमारी बेटी को पहली संतान होने को हुई तो हमने बाबा से लड़के की कामना की, प्रार्थना की, और बाबा ने भी आशीर्वाद के रूप में लड़का होने की ही बात कही। लेकिन परसों हमारी बेटी को लड़की हुई है, वह भी ऑपरेशन से। तब हमें सागर भैया की बात समझ में आई कि हमारे भाग्य में जो होना है वही होगा, किसी बाबा के कहने से कुछ नहीं होता।
क्योंकि ईश्वर की इच्छा, उसकी दया और कृपा भी जीवन में महत्व रखती है।
बस तभी से हमने बाबा को मानना छोड़ दिया।
तो यह बात है, अगर अभी भी आपकी बेटी को सामान्य प्रसव से बेटा हुआ होता तो आप लोग अब भी नाथ बाबा के भक्त बने रहते और फिर उस पर अपनी अंधश्रद्धा बनाए रखते। जब लोगों के काम हो जाते हैं अनजाने में तो लोग भी बाबा के गुणगान करते हैं, और जब काम अनजाने में नहीं हो पाते तो बाबा से मुंह फेर लेते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और भी कहना चाहूंगा मैं कि बेटा हो या बेटी हो, दोनों का अपने जीवन में बराबर महत्व होता है, इसलिए बेटी के बारे में अच्छा ही सोचें आप।
लेकिन बाबा लोग फिर भी हिम्मत नहीं हारते, वो लोगों को बरगला कर अपना भक्त बनाने में लगे रहते हैं।
लेकिन हम लोग अब बाबा पर से अपनी अंधश्रद्धा, आस्था और विश्वास हटाकर बहुत चैन से हैं, क्योंकि अब हम किसी बाबा के सहारे नहीं बल्कि ईश्वर और केवल ईश्वर के सहारे रहते हैं। अब बाबाओं के पीछे भागना बंद, केवल सत्कर्म करो
और केवल ईश्वर को मानो, किसी बाबा को नहीं।
अब आप लोगों ने पढ़े लिखों की तरह बात की ना।
अंधश्रद्धा, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे नम्रता तिवारी, पद्माकर मूले, नलिनी गहलोत और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।